ஹரிஹந்தானம் பிரணமோச்சானம் பிரணமோ ஆயிரேயானம் பிரணமோ உபஜாயானம் பிரணமோ லோயே அவசாரம் மோக்ஷ மார்க்கஸ்ய நேதாரம் நேதாரம் கர்ம வ்ரதாம் ஜ்ஞாதாரம் வேஷ்வ தத்வானாம் வந்தே கருணலோகே வந்தே கருணலோகே தத்வார புத்திர நமக்கு மகான் சாஸ்திர கோ ஆதார் பண்ணாக்கர் யாம் ஹம் சர்ச்சா கர் ரஹே தே சட்டே அத்யாய கே ஆதார் சே ஜிஸ்மே கர்மோ கே ஆஸ்ரவ கே காரணோ கி சர்ச்சா சல் ரஹீ தி. சர்ச்சா ஷுரு கி ஹம்னே விசார் கர்னே சே ஔர் பஹுத் பாத்தோ கே சந்தர்ப மே ஜப் ஹம் கெஹராயி சே விசார் கர்தே ஹே தோ ஹம் ஐஸா மஹ்சூஸ் கர்தே ஹே கே ஆகிர் யே சப் கௌன் கர்தா ஹே ஹமாரே சாத் மே ஜீவன் மே ஆகிர் யே சப் ஹுவா கேசே கிஸ்னே கியா யே சப் ஜவாப் மில்தா ஹே ஏக் ஹி சப்கே அப்னே அப்னே கர்மோ கா ஃபல் ஹே ஔர் தீன் தரஹ கே கர்ம பதா தியே கயே த்ரவ்ய கர்ம பாவ் கர்ம ஔர் நோ கர்ம. இன்மே கஹா தா த்ரவ்ய கர்ம திக்தே நஹீ ஹே दिखते नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है उसको कैसे समझाया जाए. लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है कि हमें नौ कर्म दिखते हैं और जो दिखते हैं उनसे नहीं दिखने वालों को पहचाना जाता है. दृश्य से अदृश्य की तरफ जाया जाता है ऐसा नियम होता है. दृष्टांत से सिद्धांत को जानते हैं. जो दिखाई दे रहा होता है उससे नहीं दिखने वाले को पहचानते हैं. जैसे दूर पर्वत पर हमें धुआं उठती हुई दिखाई दी तो हमने क्या पहचाना कि वहां अग्नि है. जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ऐसा नियम है. तो धुआं को देख करके अग्नि को पहचाना, कार्य देख करके कारण की पहचान होती है. ऐसे ही नौ कर्म को देखने से द्रव्य कर्म की पहचान होती है. आखिर ये नौ कर्मों का परिवर्तन कैसे है तो हम महसूस कर पाएंगे कि जरूर द्रव्य कर्म था, कोई ना कोई था, होना ही चाहिए. स्वभाव कर्म तो फीलिंग है हमारी. हम जैसा भी फील करते हैं वो सब भाव कर्म है. देखिए एक प्रश्न मेरे सामने आया, शायद करने पे आपने पूछा था कि ये भाव कर्म उनके ही होता है कि जिनके मन होता है, या बिना मन वालों के भी भाव कर्म होता है? आपने पूछा बिना मन वालों के भी होता है भाई, क्योंकि यदि बिना मन वालों के नहीं मानेंगे तो उनके द्रव्य कर्म नहीं मानना पड़ेगा, फिर उनके बंधन कैसे होगा? यदि उनके बंधन होना नहीं मानेंगे तो उनके भव परिवर्तन कैसे होगा? आखिर वो एकेंद्रीय जीव भी एकेंद्रीय पर्याय से निकलकर दूसरी पर्याय धारण करता है ना, और दूसरे कर्म सिद्ध हो या ना हो, लेकिन आयु और नाम कर्म को प्रकट ही दिख रहा है बांधा होगा. यदि वो आयु कर्म नहीं बांधेगा तो नए भव में जाकर निश्चित टाइम तक कैसे रहेगा? यदि नाम कर्म नहीं बांधेगा तो फिर उसके वो नया शरीर की संरचना किसके आधार पर होगी? वो यदि गोत्र कर्म नहीं बांधेगा तो अगले भव में जाकर उसको उच्च कुल मिलेगा या नीच कुल मिलेगा, इसका निर्णय कैसे होगा? यदि वो वेदनीय कर्म नहीं बांधा हुआ होगा तो अगले भाव में उसे संयोग कहाँ होंगे? वो भारत में जन्म लेगा कि अमेरिका में जन्म लेगा? भले ही मान लो दो इंद्री पंचेंद्री जो भी हुआ वो एक इंद्री जीव, तो वो पंचेंद्री हुआ तो वो नाम कर्म ने काम किया, पंचेंद्रिय में कितने टाइम तक रहा, वायु कर्म ने काम किया, लेकिन वो पंचेंद्रिय हिंदुस्तान का हुआ कि पाकिस्तान का, ये संयोग कैसे मिला? ये संयोग तो देखनीय का काम है, सोचिए साहब गहराई से। इसका मतलब वेदनीय भी उसके बंधना चाहिए, एकेंद्रीय पर्याय में भी, चींटी पर्याय में भी, लट पर्याय में भी, मक्खी मच्छर पर्याय में भी ये बंधना चाहिए। क्योंकि यदि वो एकेंद्रीय जीव मान लो मच्छर बन रहा है, चारेंद्रीय बन रहा है, तो वो मच्छर कहाँ का होगा? ये भी तो है, उसको वो मच्छर पर्याय के साथ में उसको आसपास के संयोग किस तरह के मिलेंगे? वो गार्डन में पैदा होगा कि विष्ठा में पैदा होगा? वो मच्छर संयोग है ना, उसके संयोग वेदनी पर निर्भर करता है। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म यदि नहीं बंधन हो रहा है, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि वो चार इंद्रिय होगा कि पंचेंद्रीय? क्योंकि वो क्षयोक्षम उसको ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के योगदान से मिलेगा। क्षयोक्षम भी तो है, तीन इंद्रिय हो गया तो उसका ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का क्षयोक्षम अलग प्रकार का है, चार इंद्रिय पंचेंद्रिय हुआ तो क्षयोक्षम अलग प्रकार का है, चींटी बना तो क्षयोक्षम तीन इंद्रिय जितना ही है, कैसे निर्धारित होगा? इसका मतलब ऐसे अंतराय में लगाइए, यदि वो अंतराय कर्म नहीं बांधा हुआ हो तो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य इनके क्षयोक्षम की स्थितियां या इनके उदय की स्थितियां उसके जीवन में कैसे बनेगी? तो हम देखते हैं एक इंद्रिय हो चाहे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और चाहे असैनी पंचेंद्रिय जीव हो, उनके जीवन में नियम से ये आठों कर्म बंधन की परिस्थितियां बननी ही चाहिए। जीवन में एक बार आयु बंधेगा और बाकी सात कर्म 24/7 बंधने ही बंधने चाहिए, नहीं तो उनका संसार परिभ्रमण ही रुक जाएगा। इस तरह हम तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर ये बात कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उनके कर्म का बंधन होता है। अब ये तो कई बात बंधन की, अब उदय लगाओ तो उदय भी सब मानने पड़ेंगे उनके। बोलो कौन से कर्म का उदय नहीं माने? ये बंधन की बात तो इसलिए की क्योंकि हमें भाव कर्म प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना है कि यदि भाव न बदले तो वो बंधन कैसे होगा? बंधन तो भावों पे ही निर्भर करता है ना, और जो भाव बदले हैं वो द्रव्य कर्म हो गया, और जो द्रव्य कर्म बंधा है वो कैसे पता लगे कि जो परिस्थितियां दिख रही है उससे द्रव्य कर्म पकड़ में आता है? कितना सुंदर से फॉर्मूले बन गए हैं, नौ कर्म दिख रहे हैं, नौ कर्मों को देखकर द्रव्य कर्म का अनुमान लगा दिया गया। नौ कर्म माने संयोग, इन संयोगों की विचित्रता, इन संयोगों की विभिन्नता, इन संयोगों का न्यारा न्यारा पन, इसे देख करके इस बात का अनुमान लगा कि इसका द्रव्य कर्म था कोई न कोई, इसके पीछे कारण क्या था, तो द्रव्य कर्म पकड़ में आ गया। देखो आप ये क्या करते हैं, ये फॉरेंसिक लैब वाले क्या? ये सीबीआई वाले और ये सब क्या करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाते हैं और असली अपराधी को पकड़ लेते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ और उससे वो सिद्ध हुआ, उससे वो पकड़ में आ गया, तो जो नहीं था, जो पकड़ में नहीं आ रहा था, जो अदृश्य था है, जो कैमरे में नहीं आया था, वीडियो कैमरे में नहीं आ रहा था, वो पकड़ में आ गया। बोले तो वीडियो कैमरे में कौन आ रहा है? ये नौकर्म। इस नौकर्म से पकड़ना किसको है तुम बताओ? ये सब विविधता किस वजह से दिख रही है? कि अपने अपने कर्म का उदय, अपने अपने कर्म का उदय, तो द्रव्य कर्म पकड़ने आ गया। तो द्रव्य कर्म पकड़ने आ गया तो आखिर ऐसा ही द्रव्य कर्म क्यों बंधा? तो उससे भाव कर्म पकड़ने आई। तो एकेंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक के जीवों में भले ही मन ना हो, मन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में भाव कर्म होते हैं। इससे नए नए तरह के उनके द्रव्य कर्म बनते हैं, और जितने नए नए तरह के द्रव्य कर्म बनते हैं इससे उनको विविध प्रकार के नौ कर्म मिलते हैं। ये सब प्रूफ होता है। अभी ये सब समझाया जा चुका है। नौ कर्म माने संयोग। आप पूछ रहे नौ कर्म क्या है, इसलिए दो तीन दिन में ये चर्चा विस्तार से की जा चुकी है ना। नौ जितने संयोग हैं, शरीर और शरीर से लेकर के जितने भी संयोग हैं वो सब नौ कर्म हैं। एक बात यहाँ और उठती है दिमाग में, या फिर बिना मन के उनके भाव होते कैसे होंगे। ये हमारे को विकल्प ऐसा आता है उनके मन नहीं है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग जितना भी विचार करते हैं उसमें मन का बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि यार अपने से यदि मन को निकाल दिया जाए तो मन को निकाल करके बाकी हम कुछ फिर क्या होगा, सारे विचार मन जनित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मन नहीं होगा तो कैसे क्या चलेगा, बिना मन के कैसे चलेगा। खैर बात सही है, इसमें आपका भी कसूर नहीं है। जो जिन परिस्थितियों में रहता है वो अपनी परिस्थितियों के अलावा दूसरी बातों को सोच ही नहीं पाता है, ये फैक्ट है, वो सोच नहीं पाता है। आप जिन संयोगों में रहते होंगे ना, जिस माहौल में रहते होंगे, जिस संपन्नता में रहते होंगे, आप असंपन्न व्यक्ति की परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया है दिमाग का। हर व्यक्ति का दिमाग, हर व्यक्ति की सोच अपने द्वारा बनने वाली परिस्थितियों के आधार पर ही काम करती है। इसलिए मन वाले जीव बिना मन वाले की परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक सच्ची घटना बतलाता हूं। जब एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई थी, ये कितने वर्षों पुरानी बात होगी, मैं समझता हूँ कोई 80-100 साल पुरानी बात समझ सकते हैं अपन। जब वो वहां हिंदुस्तान में आई तो उसने वहां गरीबी देखी और गरीबी को देखा और लोगों को देखा, भीख मांगते हुए देखा, उसकी गाड़ी के बाहर फटे हाल देखा मांगते हुए। उसने पूछा कि ये क्या हाल है, कि क्या ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उसको जवाब मिला कि इनको खाने के लिए ब्रेड भी नसीब नहीं होती है, रोटी भी नहीं मिलती है, खाने को क्या करें बेचारे गरीब। तो उसका जवाब ये था कि यदि इनको खाने के लिए ब्रेड नहीं मिलती है तो बिस्किट खा के पेट भरा करे। हमें जब कभी ब्रेड नहीं मिलती है, रोटी नहीं मिलती है, तो हम बिस्किट से काम चला लेते हैं कि ये ऐसी दशा तो नहीं हो कम से कम। अब उसे कौन समझाए क्या कि जिसके नसीब में ब्रेड नहीं है उसको बिस्किट कहाँ से मिलते होंगे। मतलब अपने लेवल से वो व्यक्ति पूछता है, ऐसा नहीं तो ऐसा, अरे हम कभी ऐसा नहीं होता है तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो तुम भी ऐसा नहीं तो ऐसा कर लिया करो। अरे भाई ऐसा वो नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां उनके साथ में नहीं है। ऐसे ही एक इंद्री जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि, ये सब क्या करते होंगे बेचारे, ये सुखी दुखी कैसे, इनकी फीलिंग कैसे होती होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, मन ही तो नहीं है क्या, वहाँ ज्ञान नहीं है क्या, क्या वहाँ दर्शन नहीं है, क्या वहाँ श्रद्धा गुण नहीं है, क्या विपरीत मान्यता के लिए श्रद्धा गुण पर्याप्त नहीं है, क्या किसी चीज को जानने के लिए ज्ञान गुण पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसी फीलिंग होती है, आखिर ये चींटियां ये ऐसा क्या है इनके पास में जिसकी वजह से ये नमकीन के पास में नहीं जाकर मीठे के डिब्बे में चली जाती है। बोलो ऐसा क्या है इनके पास में, मन तो नहीं, इधर नहीं गई इधर क्यों गई, आखिर क्या है इनके पास में कि हमने चलती हुई चींटी के आगे एक उंगली लगा दी क्या, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया। आखिर बिना मन के ये सब कैसे हो जाता है, कैसे होता है, कैसे हो रहा है ये सब। आखिर मच्छर कैसे फीलिंग कर रहे हैं, आखिर वो जो कंचले होते हैं ना अर्चला और बिच्छू है, कैसे तड़पड़ाते हैं, आप थोड़ा सा पानी डालो इधर उधर भागते हैं, ये आखिर वो कैसे फील कर रहे हैं, वो एटमोस्फियर को कैसे फील कर रहे हैं, वो अपने ऊपर आने वाले संकट को कैसे महसूस कर रहे हैं। उनके पास तो मन नहीं है, वो तो नियम से तीन इंद्रिय है, कर चला कर चला क्या कहते हैं जो भी नहीं केकड़ो केकड़ा अलग है केकड़ा अलग कीजिए। ये जो आपके घर में जो रहते लंबे ऐसे तो चलते हैं दौड़ते हैं ऐसे तड़फड़ाते पानी में नहीं हो पानी लग जाए उनके स्पाइडर नहीं कन खजूरा जैसा कन खजूरा काटता है हाँ उसके ऐसे निकले हुए होते अब जो समझ गए जो भी समझ लो क्या करें और लोग परेशान होते हैं फिर देखने वाले तो मेरा कहने का मतलब ये है वो तीन इंद्रिय है ना एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय ये आखिर इन जीवों के कैसे होता है भाई साहब मन नहीं है लेकिन ज्ञान है असंगी पंचेंद्रिय मन नहीं है लेकिन जीवन है मन नहीं है लेकिन लाइफ है इसके कारण सब कुछ होते हैं काम लेकिन जो काम सिर्फ मन से ही हो सकते हो वे नहीं होते बिना मन के भी आखिर वो चींटियां मीठे के पास में चले जाती है और मच्छर आपके कान में आकर के पता नहीं क्या बोलता रहता है तो कुछ तो बोलता है वो बोल तो रहा है भाषा है वचन है उसके वचन योग है उसके उसके दस प्राणों में से उस मच्छर की लाइफ में ये वचन बल प्राण है चार तो इंद्रिय प्राण है आयु है वचन और काय बल है और वचो स्वाल से आठ प्राण है उसके मच्छर के हम जो दस प्राणों से जीते हैं वो चार प्राणों से जीता है खैर कुल मिलाकर के इतनी चर्चा के आधार पर यह निर्णित हुआ कि असैनी पंचेंद्री जीवों के भी भाव कर्म होते हैं कैसे होते हैं ये हमने तर्क और युक्ति से आपके सामने इस बात को प्रस्तुत किया ठीक है अब बढ़ते हैं आगे चलिए भाव कर्म की काफी चर्चा हुई द्रव्य कर्म की बात हमने शुरू की बंधने वाले पार्टिकल ये सब द्रव्य कर्म है फिर भाव कर्म की बात कही ये सब भाव कर्म है द्रव्य कर्म मतलब ध्यान में आया द्रव्य कर्म धूल जैसे कण होते हैं आत्मा से चिपक जाते हैं वास्तव पुद्गल परमाणु है द्रव्य कर्म और नौ कर्म नियम से पुद्गल हैं नौ कर्मों में कुछ पर जीव भी हो सकते हैं ठीक है और भाव कर्म जो है ये चेतन का परिणाम है ये भाव कर्म प्रिंट दिख रही है सच्ची में सभी तरह के शुभ अशुभ भावों को भाव कर्म कहा है ठीक है नौ कर्म के बारे में आपने पूछा लो नौ कर्म भी आ गया सामने अनुकूल और प्रतिकूल सभी प्रकार के संयोग ये सब नौ कर्म कहलाएंगे बहुत सारे चित्र आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जिन क्षेत्रों से आप महसूस कर पाएंगे गाड़ी भी है बंगला भी है मनुष्य तेज नरक देव सब तरह की परिस्थितियां ये सब कर्मों का फल है ये क्या कहलाएंगे नौ कर्म कहलाएंगे ये कर्म का फल फिर बात शुरू की थी हमने द्रव्य कर्म के संदर्भ में द्रव्य कर्म के संदर्भ में बात शुरू हुई ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र ये आठ कर्म सब द्रव्य कर्म है और ये आत्मा शुद्ध और उसे बांध दिया गया कर्मों से ये बंधन में दिखाई देता है फिर हमने इन आठों कर्मों के उदाहरणों की चर्चा की आपके बीच में जिनमें ज्ञानावरणी के लिए पर्दे के समान कहा गया दर्शनावरणी को द्वारपाल के समान कहा गया ये उदाहरण भी याद करेंगे तो आपको इनका स्वरूप स्पष्ट ख्याल में आएगा क्या क्या है मोहनी कर्म को शराबी के एग्जाम्पल से बात समझाई गई अंतराय कर्म को खजांची कहा गया वेदनी कर्म के लिए शहद लग की तलवार की बात कही गई आयु कर्म के लिए काट का यंत्र बेड़िया कहकर के पुकारा नाम कर्म चित्रकार के समान कहा और गोत्र कर्म कुम्हार के समान कहा तो इस तरह से ये आठों कर्मों के लिए उदाहरणों की बात हुई मैं समझता हूँ द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म संबंधी उनके स्वरूप संबंधी ये प्रकरण यहाँ क्लियर हुआ होगा यहाँ तक इनके स्वरूप के संबंध में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे व्हाट इज द्रव्य कर्म तो स्पष्ट ख्याल में आवे ये पुद्गल परमाणु आपको जब भी प्रवचन सभा में शास्त्र सभा में किसी विद्वान के माध्यम से आप शब्द सुने ये सब तो नौकर्म है इनमें क्या दम है
नौकरण पे हमारी चलती नहीं है, तो फिर तुरंत सील करना, जहां बैठे हैं चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, ये सब हमारे नौकर हैं, इन सबको नौकरण पे। भाव कर्म, भाव है हमारे। आज का सेकंड सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी भोजन के बाद वाला, उसमें तो बहुत चर्चाएं करने वाला हूं मैं, उन भावों के संदर्भ में, अपनी पावर के संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूं, वो सब बातें हैं वहां होगी। तो ये आठों कर्मों के उदाहरण तक की चर्चा का ये एक चैप्टर यहाँ क्लोज होता है, और नई चर्चा हम यहाँ से शुरू करते हैं अब आगे। अब आगे देखिए नई चर्चा, घातीय कर्मों के बंध के कारण। घातीय कर्म कैसे बन रहे हैं? कल दो कर्मों की बात की हमने आपके बीच में, ज्ञानावरण दक्षिणावरण मोहनी अंतराय, चार मूल कर्म है, इनमें से ज्ञानावरणी के कारण आपको बतलाए, और कल की चर्चा पूरी ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी के बंधन के कारणों में सिमट गई। मार्मिक चर्चा थी, विचार करने के लिए है, गहराई से विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें, कहीं हमारे माध्यम से यह अपराध तो नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, बचें, बचने की कोशिश करें, कहीं अनजाने में ही सही हो सकता है, लेकिन थोड़ा अवेयर तो रहें। देखो एक तो जानकारी नहीं है तो बेचारा क्या करेगा, लेकिन जानकारी नहीं है तो कर्म को छोड़ेंगे थोड़ी ना। मैं इंडिया से यहां आया हूं, अमेरिका में आपका प्रश्न था ऐसा, मैं इंडिया से अमेरिका में आया हूं और मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो बताओ क्या कर्म छोड़ देंगे? पुलिस छोड़ देगी? गवर्नमेंट छोड़ देगी? मुझे मालूम नहीं है आगे रूल्स रेगुलेशन, मैं गाड़ी में बैठा हूं और बिना बेल्ट के चल लू आगे, तो क्या होगा बोलो? टिकट मिलेगा कि नहीं? बट इनोसेंस में हुआ है काम, ना समझी में हुआ है, फिर भी हैव टू पे, देना पड़ेगा आपको कि नहीं? एक बार तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कि नहीं अभी पे कर दो, फिर आगे तुम्हारे को कभी नहीं मिलेंगे, आगे तो फिर करेगा ही गलती, पे करना पड़ेगा। अज्ञान का कोई बचाव नहीं है। मेरे कुछ ऐसे प्रवचन है जिनमें इस टॉपिक को काफी लंबे लिया गया है, अज्ञान का कोई बचाव नहीं है, एक बहुत सुंदर टॉपिक है जिसकी एक शॉर्ट चर्चा कभी की जा सकती है। अज्ञान का कोई बचाव नहीं है। आप सोचे हम बच जाएंगे अज्ञानता से? नहीं बचेंगे आप, धोखे में मत रहना। ये सोच करके क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान ही नहीं करना चाहते, उनको पता होना चाहिए, एक इंसान है तो उसे पता होना चाहिए। मैं अमेरिका आया हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि रेड लाइट ब्रेक नहीं करनी है हमारे को, सिग्नल ब्रेक नहीं करना है, सिग्नल क्रॉस नहीं करना है, मार देते हैं, कोई बात नहीं, तो उनको पता होना चाहिए, इंसान है वो, उन्हें पता होना चाहिए जीवन कैसे जिया जाता है। जिनको पता नहीं है, मैं कहता हूँ प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं है, प्रकृति सबके लिए एक समान है, और ये बंधने वाले कर्म ये प्राकृतिक हैं, ये इनमें ज्ञान तो है नहीं, कर्मों में समझ तो है नहीं, ये तो आपके एक्शन को देखते हैं, आपके भावों के अनुसार स्वयं बन जाते, जिसके जैसे भाव चल रहे हैं, मारने का भाव आया इन तो मारने का भाव पकड़ा, ये तो कंप्यूटर होता है ना, ये तो कंप्यूटराइज व्यवस्था है, कंप्यूटर चीज को ये नहीं पकड़ेगा कि ये व्यक्ति पैसे वाला है कि ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति जैन है कि अजैन है, कंप्यूटर इसे नहीं पकड़ेगा, कंप्यूटर तो कमांड देखता है, आपने क्या कमांड दिया? हमने ये कमांड लिया कि मार दो इसको, ये कमांड दिया तो तुरंत कर्म बन गया, उतरेगा, ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, अनंत अनंत कर्म परमाणु है जो आकर के बन रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, मैंने अनबिलीवेबल पावर है इसकी। और सुनो, इसकी पावर के संदर्भ में वही फिर मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, अभी बेस्ट पार्ट वाले में, मैंने अनबिलीवेबल पावर, अनंत परमाणु एक साथ बन रहे हैं, हर परमाणु का फंक्शन अलग अलग है, किस ग्रुप में कौन सा मिलेगा, कब कैसा बनेगा, कब कैसा उदय में आएगा, कैसा सत्ता में रहेगा, कितना टाइम पीरियड होगा, यार ये कौन क्या साइंस काम कर रही है, दिमाग काम करना बंद कर देता है आदमी, कैसे होगा ये सारी बातें कैसे संभव, अद्भुत चमत्कारी काम है इसके। कौन, ये तो कंप्यूटर पे कोई इंसान चला रहा है, कंप्यूटर को भी किसी इंसान ने कमांड दिया है, इन कर्मों को कौन चला रहा है, कौन कमांड कर रहा है इनके ऊपर, कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंट्रोलिंग कहाँ चल रही है, चलती है इस यूनिवर्स में। ये कारमान वर्गणाएं अपनी स्वतंत्र योग्यता से कुछ अद्भुत काम किया करती है। देखिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात हुई, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है, सबका लेखा जोखा रिटर्न में तैयार हो रहा। हमने कहा था ना कारमान वर्गणाएं, कार्बन कॉपी, कार्बन शरीर, ये कार्बन कॉपी डुप्लीकेट कॉपी है, सब रिटर्न हो रहा है, सब लिखा जा रहा है, सब लिख तो रहे हैं, पढ़ेंगे कब, आबादा काल पूरा होने पर, इस निश्चित टाइम पीरियड तक जब तक ये कर्म फल नहीं देते हैं तब तक का टाइम आबादा काल कहलाता है। वो आबादा काल पूरा हुआ, आबादा काल पूरा हुआ, और जैसे ही आबादा काल पूरा हुआ उसी क्षण आबादा काल पूरा होते ही उस कर्म ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया, फल मिलेगा तो पता लगेगा हमने जो किया था उसका कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, इसलिए ये ज्ञान ऐसा हो रहा है। चलो भाई समय सीमित, काम बहुत ज्यादा, आगे बढ़े मोहनीय की तरफ, केवली है आगे, अपने सूत्र है 13 नंबर का सूत्र है आपके इसमें, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्ण वादो दर्शन मोहस्य, सूत्र दिखा आपको है? देखो क्या है सूत्र, केवली श्रुत, एक एक शब्द आ रहा है सामने, केवली श्रुत संग फिर धर्म फिर देव और फिर अवर्णवादू, अवर्णवादू 13 नंबर छठे अध्याय का चैप्टर 6 सूत्र नंबर 13, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवाद, अवर्णवाद खतरनाक है, बहुत खतरनाक है भैया, केवलियों का वर्णवाद, वो भगवान ये दर्शन मोहनी कर्म ये नित्यात्व, ये केवलियों के वर्णवाद से बन रहा है, शायद मेरा पूरा भी एक प्रवचन है इसके ऊपर, एक प्रवचन नहीं इस सूत्र के ऊपर 5 प्रवचन है इस एक सूत्र पर, केवली संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोहन से, और वो प्ले लिस्ट में अवर्णवाद के नाम से फोल्डर है, सोना गिर के प्रवचन है, 5 प्रवचन है अवर्णवाद के नाम से, वहां कहां अवर्णवाद उठा है, कहां कहां असाधना जिसे कहते असाधना, कहां कहां असाधना कर रहा है, किस किस की कर रहा है, देव की भगवान की स्वरूप की विराधना, वो अपमान, जिन मंदिर में जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़ा खड़ा बातें करता है, मोबाइल लेकर के जाता है और ऐसे दर्शन करता है मोबाइल करते लेते लेकर के, दोनों हाथ जुड़े रहते हैं और बीच में मोबाइल रहता है, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है, बीच में फोन बजता है और भगवान को छोड़कर फोन उठा करके फोन पे बात करना शुरू कर देता है, तुम्हें अंदाजा है किसका अपमान कर रहे हो तुम, तुम्हें अंदाजा है किसकी विराधना कर रहे हो, ये केवलियों की विराधना है, तुम्हें भगवान नहीं समझ रहे हो, सामने वेदी पर विराजमान है, तुम्हें परमात्मा दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये परमात्मा है ये भगवान है, आप क्या कर रहे हैं, हम लगता ही नहीं, ओ ये तो प्रतिमा है, जस्ट आइडल क्या प्रतिमा है, पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है, क्या समझ रखा है आपने, अंदाजा ही नहीं है कुछ भी आपको, कल्पना करो ट्रंप ने आपको टाइम दिया हो 15 मिनट का, इतना ही टाइम दिखाते हो आप मंदिर में भगवान के सामने, 15 भी ज्यादा कह दिया, कितनी कितनी देर लगते हैं भगवान के दर्शन करने में, 2 मिनट, ट्रंप ने आपको टाइम दिया 2 मिनट का, फोन लेकर के जाओगे कि नहीं, फोन बीच में बजेगा तो उठाओगे कि नहीं, वो यदि खड़ा हुआ हो तो सामने मजे से बैठोगे कि नहीं, सोचो सोचो जरा, जब एक किसी मिनिस्टर की किसी अधिकारी की किसी बड़े आदमी की इतनी रेस्पेक्ट हम करते हैं, सुनो यदि उससे फेस टू फेस बात कर रहे हो और आपका बच्चा सामने से आ जाए बुला रहा हो तो आप ऐसे अभी ऐसे हाथ से रोकता है, अभी अभी कोई बात चल रही है, ऐसे करता है। और यहाँ भगवान यदि सामने है तो आपको भगवान नहीं दिखते। पांच प्रवचन है, पांच मिनट में क्या कह पाऊंगा आपसे, कितनी बात कह सकता हूँ, कितनी बात बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी बात, आपके प्रवचन सुनते रहते हैं, आपके प्रवचन सुनते रहते हैं, लेकिन भाई प्रवचन सुनते हो आप डायरेक्ट नाम डाल करके सुन लेते हो, जो भी प्रवचन दिख जाता है आपको वहां गोले की फोटो देख करके प्ले लिस्ट पे जाना पड़ेगा, तो गोले में जहां भी फोटो दिखे उसको क्लिक करके अब वहां प्ले लिस्ट में सर्च करो, आप अवार्ड वार्ड मिलेगा आपको। फिर लाइन से सुनो उसी जगह पर जाकर के, तो जाकर के समझ में आएगी बात। केवलियों का श्रुत का अवार्ड वाद, अभी केवलियों में बहुत सारी बातें हो सकती है, लगा लेना अपने दिमाग से क्या क्या करते हो आप, भगवान को पीठ देना, भगवान के सामने इधर उधर घूम जाना, इधर उधर की बातें करना, भगवान से मांगना, ये कितना बड़ा अपमान है भगवान का। बोलो तो आप मांग सकते हो उससे ट्रंप के पास में जाकर के कि आप मेरे को फ्लोरिडा दे दो, मेरे नाम कर दो फ्लोरिडा, कर सकता है वो क्या कहेगा, यार माफ कर जो काम मेरे हाथ में है वो यदि तू कहे तो हो सकता है, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मांगेगा तो क्या होगा। आप वो मांग रहे हो उनसे भगवान से जाकर के जो वो छोड़ चुके हैं, जो उनके पास में नहीं है। मुकुंद भाई से जाकर के मांगोगे आईफोन तो दे देंगे, भगवान से मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जिसके पास में जो चीज है, एक पेन भी चाहिए ना आपको, क्या आपका पड़ोसी दे सकता है, भगवान नहीं दे सकते। अब बोलो आप, अरे साहब भगवान की इतनी भी वैल्यू नहीं, आप क्या बात कह रहे हो, ये सुनो भगवान की तो ये वैल्यू है कि उनके दर्शन करने मात्र से निरक्ति और निकाशित जैसी कर्म प्रकृतियां भी टल जाती है। भगवान की तो इतनी वैल्यू है कि उनको देखने मात्र से ये वितरागता का मार्ग मिल जाता है। भगवान की इतनी वैल्यू है कि उनके दर्शन करने मात्र से अपना प्रतिबिंब उनकी छवि में दिखाई देता है, इतनी कीमत है उनकी। भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग मिल जाता है, तुम कीमत की बात करते हो, दर्शन करने की क्या अहमियत रह गई, क्या भिखारी पर ही दर्शन करने का प्रयोजन रह गया है। अवर्णवाद को देखो, केवलियों का बहुत बातें हो गई, श्रुत का अवर्णवाद, शास्त्र का अवर्णवाद कर रहा है, झूठे हाथ कल जितनी बातें लगाई थी ज्ञानावरणी में, जो बातें लगाई थी वो ज्ञान की विराजना के अंदर भी शामिल है, लेकिन इसके प्रति तिरस्कृत बुद्धि, इसके प्रति तिरस्कार का भाव, ये ग्रंथ बेकार है, इस ग्रंथ में कुछ दम नहीं है, हमारी ये शास्त्रों की बातें, ये अपमान जो आप कर रहे हैं जिनवाणी माँ का, ओहो जिसको अपने माँ की कीमत नहीं है उसका क्या होगा। अभी 3 घंटे में एक प्रवचन ऑटोमेटिक आने वाला है यूट्यूब पर, आज नहीं कल आएगा, कल आएगा, कल शाम को 9:59 बजे माँ का जन्मदिन, जिनवाणी माँ का जन्मदिन, फिर पंचमी की तरफ माँ का अपमान कर रहा है, मुझे अंदाजा नहीं है कि ये माँ है तेरी, जिनके घर में जिनके यहाँ माँ का सम्मान नहीं है उन घरों की दुर्दशा क्या होगी, आप सोचना यार क्या हालत होने वाली, जिनके घर से माँ को निकाल दिया जाए वहां क्या होगा। ये जिनवाणी माँ है और लोग घरों से निकाल करके मंदिर पहुंचा देते हैं, सेंटरों में पहुंचा देते हैं, रद्दी में दे देते हैं, माँ को बेच दिया जिसने, उसका क्या होगा। ये माँ का अपमान बर्दाश्त करने योग्य नहीं, सजा भुगतनी पड़ेगी। ये दर्शन मोह है, आपको मालूम है 8 कर्मों में से अकेला एक दर्शन मोह ऐसा है जिसका बंधन 70 कोड़ा कोड़ी सागर सकता होता है, मैक्सिमम बंधन है दर्शन मोहनी का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मैक्सिमम टाइम, 70 कोड़ा कोड़ी सागर सोच नहीं सकते। ऋषभ देव 1 कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए, पूरा 4th काल निकल गया, 3rd काल से लेकर के 5th काल तक का ये काल आ गया, ये बीच का जो गैप है 1 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने लंबे काल की बात कर रहे हैं, एक नहीं 70 कूड़ा कूड़ी सागर, मारुचि एक कूड़ा कूड़ी सागर पहले हुआ था। 70 कूड़ा कूड़ी सागर का बंधन किस वजह से? केवली और श्रुत के अवर्णवाद की वजह से। केवलियों का अपमान और श्रुत का अपमान। संग लगाओ, संग की तरफ बढ़ो आगे। अपमान संग का, मुनि संग का, चतुर्विध संग का, मुनि आर्यिकाओं का, श्रावक श्राविकाओं का, या फिर संग लगाओ चतुर्विध संग, ऋषि मुनि यति अनगार, इनका अपमान, संग का वर्णवाद। ठीक है ना? फिर कभी कभी बोल देता है ऐसा, इसको पता नहीं है, मैं भी करूंगा आगे चर्चा, कभी कभी ऐसी बातें कर लेता है ये। अरे यार आजकल तो सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। जनरल चर्चा मत करो, जनरल बात मत करो, किसी कंसेप्ट को आप जनरलाइज मत करो। सबके हाल खराब है आजकल, तो वही तो होंगे इस पंचम काल में, सच्चे साधु वितरागी कल होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, लालित रहते होंगे। तुम्हारी निगाह में नहीं है तो तुमने सबको एक खाते में डाल दिया। बाहुल्यता हो सकती है, अभाव नहीं कह सकते। संघ का वर्णवाद, धर्म और देव का वर्णवाद, कुछ नहीं रखा है धर्म कर्म में। ये सब धर्म वर्म बेकार की चीजें हैं, ये बेकार है यार। जैन धर्म तो बहुत पुराना है, इसके रिचुअल्स जो है ना ये सब मजेदार नहीं दिखते हैं। किस तरह से मनाते हैं लोग? उपवास करके। पर्यूषण कैसे मनाते हैं? लसकरण कैसे मनाते हैं? बोलो, इन लोगों के तो सब बेकार है सब। ये क्या तरीके? हमारे देखो फेस्टिवल तो हमारे होते, खाओ पियो मौज करो, ऐसे आराम से डांडिया खेलो है? ये बात अलग है कि ये जैनियों में भी पर्यूषण लसकरण के अंदर खेलने लग गए हैं, ये अलग मैटर है। जैनियों में भी लोग जिन मंदिरों के अंदर ही आयोजन करने लग गए हैं, भले भजनों के ऊपर करो लेकिन कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर, इन दिनों में धर्म के दिनों में भी ये सब करने लग गए हैं। लेकिन भाई ये क्या हो रहा है? अवर्णवाद है ये सब। और अंतिम देव का अवर्णवाद, दर्शन मोह की चर्चा हुई है यहां तक सारी। देव का अवर्णवाद क्या, कैसे ये देव का अवर्णवाद क्या है? देव कौन है? ये तो भगवान तो हो गए केवली, अब देव कौन बच गए? देव है चार प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासियों का अपमान, व्यंतरों का अपमान, ज्योतिषियों का अपमान, वैमानिकों का अपमान। कैसे अपमान करता है? सूर्य चंद्रमा आदि का अपमान, उनके स्वरूप को नहीं पहचानना उनका अपमान है, उनको नहीं पहचान रहा है उनका अवर्णवाद कर रहा है। पौधर में इंद्र, इंद्र देवता कितने प्रसन्न है आजकल, तो रोज बरसात कर रहे हैं आपके यहाँ, ये अपमान है उनका। वो इंद्र देवता बरसात नहीं करते, हम पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं हो रहा है उनका अवर्णवाद। इंद्र देवता बरसात करते हैं कैसे? लोग तो ऐसा ही कहते हैं, जगत में तो ऐसा ही कहा सुना जाता है। देवी देवता के लिए बलि चढ़ाना, उससे प्रसन्न होते हैं, खून मांस इनसे देवताओं को, ये उनको छूते तक नहीं है, अनटच रहते हैं देव लोग इन सब चीजों से। आपको मालूम है पुराने समय में भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में हमारे यहाँ इस तरह की बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मुनि राज वगैरह जो जंगल में जिनका मरण हो जाए, मान लो जंगल में रहते हैं बड़े बड़े मुनि संग होते हैं, किसी की डेथ हो गई, आयु तो सबकी पूरी होगी, फिर क्या करते होंगे? उनका जलाते होंगे, लकड़ियों में जलाते होंगे। ये ना भारतीय संस्कृति का इतिहास एक पुस्तक है, ये अपने रामधारी सिंह दिनकर की, राष्ट्र कवि है भारत के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक पुस्तक है संस्कृत, भारतीय संस्कृति का इतिहास, संस्कृत संस्कृति का, संस्कृति के चार अध्याय ये पुस्तक है। तो उसमें उसने एक बात लिखी जैनियों के संदर्भ में, तीन बातें कही उसने, और उनमें एक बात यह भी लिखी कि जैन परंपरा में अहिंसकवादी जैन होने के कारण इनके यहां शव को जलाया नहीं जाता था, इनको कब्र में दफनाया जाता था। जैन परंपरा में, जैनियों की परंपरा थी, तो जलाते हैं। ये तो मुस्लिम संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति ये तो है ना, वो लोग कब्र में रखते हैं, लेकिन जैन संस्कृति के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा और कहा कि अहिंसक थे। इस वजह से ये अकबर के जमाने में उसने कहा हिंदुस्तान में दो ही धर्म रहेंगे, या तो हिंदू या मुसलमान, बोलो जैनियों को कहां शामिल होना है। यदि मुसलमानों में शामिल होंगे तो मुसलमानों जैसे कार्य होंगे, और हिंदुओं में शामिल होंगे तो हिंदुओं में शामिल होंगे, जैनियों को दोनों में से कहां शामिल किया जाए। तो जैनियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम हिंदुओं में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो हिंदू कल्चर जैसा था शव को जलाने का, वो कल्चर डेवलप हुआ जैनियों में। ये बात उन्होंने उसमें लिखी। सच्चाई है जो कुछ भी, हम नहीं उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो बात वहां लिखी है उस बात को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और मे बी पॉसिबल क्या है, अहिंसक रीति से हमने उसको वहां जाकर के कब्र में रख दिया, और वो जिसका जो होना होगा तो हो हुआ जाएगा। कम से कम उसमें अनंत जीवों की हिंसा तो नहीं हुई। अनंत एकेंद्रीय है और असंख्यात त्रस्त मरने के बाद में, इसीलिए ये सिस्टम भी अपने यहाँ है जैन परंपरा में आज भी इतना तक तो फॉलो करने की कोशिश करते हैं कुछ समझदार लोग कि विद इन 48 मिनट यदि संभव हो सके जितना जल्दी से जल्दी बॉडी को नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद कितना तेज तीव्र गति से उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अमूर्छन जीव उत्पन्न हो रहे हैं, दो इंद्रिय जीव उत्पन्न हो रहे हैं, सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य उसमें उत्पन्न हो रहे हैं उस देह में। अमूर्छन असंख्यात जीव सब मरेंगे, सब जलेंगे, लकड़ियों को जलाया जाएगा। हमारे यहाँ लकड़ियां जलाने का प्रावधान नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जैनियों के घरों में, आपके यहाँ फ्लोरिडा में तो शायद कम है, फ्लोरिडा में भी है क्या, लोग फायर जलाया जाता है अंदर, ठंड इतनी पड़ती नहीं है आपके यहाँ, लेकिन उधर जो है सब घरों में, न्यूयॉर्क साइड और इधर कहीं चले जाओ आप तो सब जगह पर वहां फायर वेस्ट मिलेगा। सब जगह शिकागो में बहुत बर्फ पड़ती है उधर, तो वो सब जलाते हैं। तो उनमें भी जो अपने जैन है, जो अपने जो इन चीजों को फॉलो करते हैं वो नहीं जलाते हैं। उन्होंने वो प्लेस होता तो है सब घरों में, वो हटा दिया है, उसको बंद कर दिया है। हम कब कितनी लकड़ियां, उन लकड़ियों को ठोको जरा बाहर ले जाकर के, आपको जीव जलते चलते हुए नजर आएंगे, दो इंद्री तीन इंद्री की खूब चलते हुए ऐसे दिखाई देंगे आपको। उनको कैसे जलाएं हम उन जीवों को, तो ये कंसेप्ट तो समझ में आता है कि यार ऐसा होगा निश्चित तौर पर। 100-200 लकड़ियों के अंदर किसी इंसान की बॉडी को जलाएं, इससे बेटर ये बात दिखाई देती है कि दफना दो, संभव है ऐसी बात। तो मैं तो यहां ये कह रहा था कि वो जो मुसलमान, वो जो बात कही मैंने मुनिराजों के संदर्भ में, भगवती आराधना का रेफरेंस दिया मैंने, वहां मुनिराजों को क्या करते होंगे वो, और मुनिराज हैं आपस में क्या करेंगे, बोलो लकड़ियां ला करके जलाएंगे उसको नहीं, तो क्या करते हैं वो। तो दो तीन उल्लेख किए उसमें एक उल्लेख ये किया कि बॉडी को ऐसे ही जंगली पशुओं को जानने, पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा उल्लेख है, जो होगा हो जाएगा उसका, छोड़ दिया उसको किसी मेन रोड से या किसी जगह से थोड़ा साइड में ले जा करके, या जहाँ थोड़ा सा बहुत घना जंगल जैसा हो ऐसे स्थान पर ले जाकर उसे छोड़ देते, जो होगा हो जाएगा। लेकिन ये इस पॉइंट से याद दिला रहा हूँ मैं, ये देव के अवर्ण वास्ते उसमें क्या करते हैं, किसी कांटे से जंगल में यदि कहीं कोई कांटा वाटा यदि कुछ हो, उस कांटे से उसकी बॉडी को कहीं से कट लगाते हैं, तो खून की एक आध ड्रॉप बस दिख जाए तो बात खत्म हो जाए, बस इतना, फिर छोड़ देते हो अब जो कुछ भी हो। भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो रीजन है उसके पीछे कारण है कि ये जो दिगंबर मुनिराज की ये जो मुद्रा थी, ये जो डेड बॉडी थी, कोई देव कोई जंतरवासी वो इनकी बॉडी के साथ में आकर के खेल नहीं करे, खिलौने की तरह घुमाए नहीं, उसके साथ में कोई व्यवहार करे, उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसे उपद्रव करे तो वो धर्म बदनाम होता है, वो वेश बदनाम होता है। पॉइंट समझ में आ रही है आपको, फिर देखो मुनिराज क्या कर रहे हैं, अब वो बॉडी के अंदर चला गया, घुस जाए, यंत्र होते हैं कहीं भी किसी के शरीर में, किसी के शरीर से दूर रहता हुआ जैसे कार्य कराते हुए देखे जाते हैं मनुष्य गति के जीवों के साथ में, तो कुछ ऐसा करे लेकिन यदि वो कट लगा है, क्या वो कट लगा हुआ है ना, तो कोई यंत्र उसके पास में जाएगा तक नहीं, क्योंकि वो ब्लड से दूर रहते हैं। और यदि आप ये पूछते हो कि इससे देव प्रसन्न होते, जगत में ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की, ये देव का अवर्णवाद है, ये देव का अपमान है। मुझे ध्यान है मेरी नानी जी की जब डेथ हुई तो हमारे वहां बहुत सारे लोग, जब डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई थी, 1998 की बात है, तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि हमारे नाना जी ने उनके पैर में कट लगाया और उसके बाद में वो फिर बॉडी को फिर बांधा किया और फिर बाद में लेकर के दाह संस्कार के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ले जा रहे हैं और ले जाते कोई यंत्र खिलवाड़ कर दे रहे, संभव पॉसिबल कुछ भी हो, इससे क्या जाता है अपना पिछले में इतने से कटने, तो ऐसी कुछ उससे दुर्घटना घटने की संभावना न हो। देखिए ये जितनी बातें यहाँ कही गई हैं, इनमें कुछ बारीक बातें भी हो सकती है, कुछ सूक्ष्म चर्चाएं भी हो सकती है अवर्णवाद के संदर्भ में। उनके बताए हुए मार्ग को स्वीकार नहीं करना, ये उनका अवर्णवाद है, सबसे बड़ा अवर्णवाद। केवली भगवान ये कह रहे हैं कि पंचेंद्रीय विषयों में सुख नहीं है, श्रुति ये कह रहे हैं कि पंचेंद्रीय भोगों में आनंद नहीं है, और हम इन्हें पढ़ते हुए भी कह रहे हैं ये शास्त्र की बातें यार, तुझे चलने दे, चलता है, ये अपमान नहीं है। जिनवाणी हमारे को ये कह रही है कि आलू खाने योग्य नहीं है, प्याज खाने योग्य नहीं है, जमीकंद खाने योग्य नहीं है, जिनवाणी ने हमारे को ये कहा, हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने समझा, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब सामने आया तो खाना शुरू किया और कोई दूसरे ने कहा अरे अभी तो पढ़ के आया है, अरे यार वो शास्त्र की बात शास्त्र में रह रहे हैं, चलने दे, ये क्या कर रहे हो आप, यह अवर्णवाद है इसका, ये शास्त्र का अवर्णवाद। केवली तुम्हारे को केवली देख रहे हैं, केवली तुम्हारे को आत्मा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हें परमात्मा छो, तुम्हें भगवान छो, बद्दा जीव परमात्मा छे, स्वभाव की दृष्टि से देख रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं, तुम्हारे को ज्ञायक बतला रहे हैं, और तुम अपने आप को ज्ञायक स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये केवलियों का अवर्णवाद। उनकी बात को नहीं मानना ये कितना बड़ा अपमान है, ये कितना बड़ा तिरस्कार है। आपको मालूम है कल भोजन में डोसे बने यहाँ आपके, तो महेंद्र भाई के कहने पर मैंने एक डोसा और ज्यादा खा लिया हाथ धोने के बाद, कह रहे हैं यार ठीक है चलो कोई बात नहीं रख लो बस, कोई बात नहीं। अब मैं आपको किसी बात के बारे में कहूं तो आपको ऐसा लगता है कि यार चलो पंडित जी कह रहे हैं चलो ले लो, ऐसा ऐसा हो जाता है ना, और नहीं मानो तो ऐसा फील करते हैं नॉर्मली कि थोड़ा सा इनका सम्मान नहीं रखा हमने। भले ऐसा होता है आपको नहीं खाना हो ना तो भी आप ये कहेंगे ठीक है आपका मान रखने के लिए एक बात करें, ऐसा कई बार बोलते हैं आप, आपके सम्मान के लिए सिर्फ एक बात करो, कोई बात नहीं ले लेंगे, पूरी मिठाई तो नहीं खा पाऊंगा, एक टुकड़ा दे दो आप जिसने आपको सम्मान रख लिया, चलो ठीक है आपसे भी लगता है अपना सम्मान रख लिया। अब हम ये कह रहे हैं ये केवलियों ने कोई बात कही, तीर्थंकर परमात्मा ने कोई बात कही, बोलो साहब मैंने भाई श्रुत ने कोई बात कही गई, अब इसका सम्मान क्या होगा? यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो तो क्या यह है केवलियों का अवर्णवाद नहीं है? क्या यह अनंत तीर्थंकरों का अवर्णवाद नहीं है? कितनी बातें हो सकती है, जम्बू द्वीप की चर्चा, ढाई द्वीप की चर्चा, पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप की चर्चा, 16 स्वर्ग रेणुका जी की चर्चा, 7 नरकों की चर्चा, सामने से पलट करके कहता है किसने देखे हम नहीं मानते, ये किसका अपमान है हमारा, ये किसका अपमान है? तुम नहीं मानते थे, नहीं मानते तो मत मानो, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हमारा थोड़ी ना बिगड़ रहा है, अभी तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, अभी तुम नहीं, नहीं मेरे को दिखता नहीं है, मैं कैसे मान लू, मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई बात नहीं बेटा तू वहां पहुंच करके ही मानना, नरक में जाकर के मानना, मत मान। सोचो किस किस तरह के अवर्णवाद की चर्चाएं हो सकती है इसमें। एक और मार्मिक बात कहता हूँ, एक बात मैंने मान्यता के संदर्भ में कई पहले अलग अलग चर्चा कर ली थी, फिर उनकी बात हम स्वीकार नहीं करते हैं, तत्व की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र के 7 तत्व को नहीं मान रहे हैं, विषयों में सुख नहीं है, धर्म में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है, ज्ञायक आनंद स्वरूप है 43 जो कारण परमात्मा है इसको नहीं मान रहे हैं, ये सब निरंतर चल रहा है। आप सोचना आपको ऐसे लगेगा कि यार देखो हम लोग भी तो हैं, तो उन पापियों की तो बात छोड़ो, अब हम लोग भी आगे ये बात सुनते तो है ना, लेकिन अपने आप को ज्ञाय नहीं मान पा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर क्या हमें भी क्यों नहीं बन रहा है 24/7 बन रहा है दर्शन वो, फिर कैसे बन रहा होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सिद्धांत कह रहा है ना, ये तो आगम बोल रहे हैं ना कि कर्म 24/7 बन रहे हैं, 24/7 पाप कर्म बन रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दिस कि ये जो है आपका कौन सा मोहनी है, ये बन रहा है कि नहीं 24/7 बन रहा है, सोते समय भी बन रहा है, तो सोते समय इनकी विराधना कहां कर रहे हो आप? सोते समय आप भगवान की पीठ कहां दे रहे हो? सोते समय आप भगवान के सामने बातें कहां कर रहे हो? सोते समय आप भगवान के सामने मोबाइल कहां बजा रहे हो? सोते समय तो ये काम नहीं कर रहे हो आप, सोते समय जिनवाणी की विराधना कहां हो रही है कि जमीन पर पड़ी है? सोते समय तो ये काम नहीं हो रहा है, सपने कदाचित हो तो संभव है, लेकिन फिर भी क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक ये धारा प्रवाह चल रहा है कि मैं संजीव गोदा हूं? क्या ये नॉन स्टॉप चल रही है ये बात, क्या वर्णवाद है ये दर्शन में बन रहा है, नॉन स्टॉप चल रही है क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं दुनिया में, इतने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, 20 लोग सो रहे थे उनको सुलाया, गहरी नींद की गोली देकर के सुलाया उनको, और उसके बाद में बहुत तेज आवाज करके कुछ शब्द बोले गए, वो उठे नहीं, फिर किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के पुकारा गया बहुत तेज आवाज में, तो वो एक व्यक्ति जिसका नाम पुकारा जा रहा था वो उठ गया और बाकी रहे थे। बोलो, मुझे कोई पुकार रहा है, मुझे कोई बोल रहा है, एकदम मेरे को ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पुकारा, मुझे ऐसा लगा, ये क्या हुआ? फिर तेरे साथ ही ऐसा, क्योंकि तू देह मान रहा है अपने आप को, देह रूप अनुभव कर रहा है, समझ में आ रही है बात? तो चलना चाहिए, आप तलाशो नहीं तो फिर क्या बातें होगी, आखिर दर्शन मोह कर्म कैसे बनेगा? मैं तो कभी कभी इस पॉइंट को समझाता हूँ तो ये कहता हूँ कि ये जो है ना हमारे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, इस लैंग्वेज इसी लैंग्वेज में बात करता हूँ शर्मा जी की, पड़ोस में कोई शर्मा जी रहते नहीं है वैसे हमारे, एक बार तो मेरे प्रवचन ये चलते रहते ना, एक सज्जन मिले मेरे को, उन्होंने कहा यार वो ये आपके पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं ना, आपका प्रवचन सुना था हमने वो ऐसा मानते हैं, आपने ऐसा समझाया था, मैंने कहा कोई शर्मा जी नहीं रहते लेकिन ये वो जो पड़ोस में रहते हैं, आपके पड़ोस में जो नॉन जैन पर्सन रहते हैं, समझ लो आप आपके मंदिर ही नहीं आते, कुछ एलियों का वर्णवाद का सवाल ही नहीं है, बहुत शांत परिणाम ही है, मंदिर दशाइए, उनको आपके धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, आपके धर्म के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलते हैं, आपके मुनिराजों के बारे में, आपके संतों के बारे में उनकी कोई गलत धारणा नहीं है, आपके शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, झूठे मुंह बोलने का तो सवाल ही नहीं है, उसकी विराजना का सवाल ही नहीं है, बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, उनको ये अवर्णवाद केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये जो सूत्र है 13 नंबर का सूत्र छठे अध्याय का, ये बंधन हो रहा है कि नहीं? क्यों बुद्ध क्या कर रहे हैं अपन? बोलो सर, ये तो वहां स्वामी आचार्य कह रहे हैं, 2000 साल पहले लिखा है, दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं है, सर्व जैन समुदाय मानता है, एक मत से मानता है, ये सूत्र लिखा है कि नहीं आपकी पुस्तक में? कुछ परिवर्तन है? केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्ण वादो दर्शन मोह, दर्शन मोह नहीं कर्म बन रहा, फिर क्या बातें होगी आखिर? भाई साहब बातें तो यही है। अब आप कहोगे साहब वो केवली की क्यों मानेगा, वो तो जैन ही नहीं है, वो क्यों मानेगा? नहीं माने तो मत माने, हम क्या करें, गलत काम तो कर रहा है ना। मैं ये जो है गाड़ी चलाने के सारे रूल क्यों पढ़ूंगा आपके? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं अमेरिका की सारी गाड़ी चलाने के नियमों को क्यों पढ़ू? कोई बात नहीं, मत पढ़, लेकिन चला तो रहा है ना, गाड़ी तो चला रहा है ना, तो भोजन तो कर रहा है ना, मुझे पता होना चाहिए क्या चीज खाने योग्य और क्या चीज नहीं खाने योग्य होना चाहिए। तो ये दर्शन मोह संबंधी, ये अवर्णवाद संबंधी ये बातें यहाँ संपन्न होती है। मैं समझता हूँ ये प्रकरण आप लोगों के अच्छी तरह से गहराई से समझ में आया होगा। हम जानते हैं जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका ये अवर्णवाद तो चलने वाला नहीं, कहीं ना कहीं विराधना होती रहेगी, सम्यक दर्शन होगा तो ही जाएगा दर्शन मोह, अदरवाइज तो दर्शन मोह निरंतर बद रहा। तो दर्शन मोह कब जाएगा? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि तीव्र दर्शन मोहनी कर्म बंधने की तुलना में थोड़ी सी अवेयरनेस हो तो वो दर्शन मोहनी कर्म मंद, कम, अल्प मात्रा में बंधे, ये हो सकता है। नहीं तो आप कहोगे साहब फिर तो बंद तो बंद ही रहा है, फिर हम क्या करेंगे, फिर तो कुछ भी करो, फिर करो चाहे नहीं करो, वो तो बंद ही रहा है 24/7। फिर काय को हमारे को समझाते हो, काय को सिखा रहे हो हमारे को, क्यों पढ़े सुने, क्यों समझे इन बातों को? नहीं नहीं, फर्क पड़ता है। इसमें एक सूत्र आया था जो हमने पीछे नहीं पढ़ा था, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष्य व्यक्त विशेष्य है अधिकरणम जीवा जीवा। ये सूत्र इसी में, इसी छठे अध्याय में, कौन से नंबर का सूत्र है? छठे नंबर का सूत्र बतलाया जा रहा है, पांच, हाँ छठे नंबर का सूत्र है। क्या लिखा है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष्य व्यक्त विशेष्य है। बहुत सुंदर सूत्र है छठा सूत्र। क्या क्या बात है, इसमें समाधान है आपका। देखो अब रिटर्न में दिखाता हूं, अब देखो इसको, आपको रेफरेंस मिलेगा तो आपको भरोसा होगा इस बात पर। क्या लिखा है? तीव्र, छठा सूत्र देखिए, तीव्र, फिर क्या लिखा? मंद, तीव्र मंद, फिर क्या लिखा? ज्ञाता ज्ञात, माने ज्ञात माने जानकारी हो और अज्ञात माने जानकारी नहीं हो, ज्ञाता ज्ञात, मिल गया समाधान? प्रश्न होता है भाई साहब, बहुत बड़ा प्रश्न है, मेरी गलती नहीं है यार, मुझे कुछ पता नहीं था यार, प्लीज यार मुझे छोड़ दो यार, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मालूम नहीं था, आगे से नहीं करूंगा मैं, छोड़ दो मुझे। अज्ञात भाव, अज्ञात, फर्क तो पड़ेगा थोड़ा सा, मंद तीव्रता का, तीव्र भाव से अलग है, मंद भाव से अलग है, ज्ञात भाव से अलग है, अज्ञात भाव से अलग है, ज्ञाता ज्ञात भाव, फिर क्या कहा? अधिकरणम, अधिकरण, इनके बेस पर वीर्य पावर, किस पावर से आपने वो काम किया है, अंदर की पावर कितनी थी आपके आलू खाने की, वो पावर अंदर में पावर कितनी थी आपका, वो केवली सुसंग धर्म आदि का विराधना करने की, वो ज्ञानवर्णी कर्म को बांधने के संबंध में उसकी विराधना के संदर्भ में आपने किस पावर से रिएक्ट किया था, वो पावर वीर्य, उससे फर्क पड़ता है बंधन में, वीर्य। फिर क्या कहा? विशेष्य व्यस्त, इन सबकी विशेषताओं से तब विशेष्य है, इनमें विशेषता पड़ती है, बंधन में विशेषता पड़ती है, फर्क पड़ता है, लेकिन मुक्ति बंधन से छूट नहीं पाएगा। आप सोचोगे छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा रंच मात्र भी नहीं हो सकता है, छुटकारे का चांस नहीं है कहीं भी। तो ये बात हुई दर्शन मोह के संदर्भ में। इसी तरह से एक सूत्र दिया है चारित्र मोह के संबंध में, कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, ये चारित्र मोह नहीं यात्रा का कारण है। बोलो, थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क
पड़ेगा,
जो भी हो ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो ये पूछ रहे हैं, एक को ज्ञान है और एक को ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत यदि बंधन में फर्क पड़ता है तो ज्ञान वाले के ज्यादा होगा कि अज्ञान वाले के ज्यादा होगा? तो मेरा ये मानना है इसमें अज्ञान वाले के ज्यादा होगा, इट डिपेंड, थोड़ा एक उसमें वो भी है, ट्विच है थोड़ा सा, वो ये है कि एक तो जानते हुए भी खा रहा है लेकिन परिणाम तीव्र है उसके, वगैरह है मैं तो खाऊंगा ऐसे परिणाम है, और एक दूसरा जानते हुए खा रहा है उसके निरंतर मन में बात आती है खा तो रहा हूं लेकिन खाने योग्य नहीं, बहुत मंद कर दिया उसने, वो अज्ञान वाले से मंद कर दिया, ऐसी भावना हो तो बिल्कुल भावों के ऊपर ही है ना, सारा खेल तो भावों का ही है। यदि आपके मन में ये भावना चल रही है जानते हुए भी कि भाई यार खाने योग्य नहीं है, चलो खा लेते हैं यार, अब छूटेगा तब छूटेगा लेकिन कभी तो छोड़ूंगा, हाँ इसीलिए सही बात है। तो अभी इसके भाव बने मन में कि यार कभी ना कभी तो छोड़ूंगा, रात को पानी पीता हूँ योग्य नहीं है यार, कभी तो कभी छोड़ूंगा यार, पीने योग्य नहीं है, पी रहा है जानते हुए भी पी रहा है, पीने योग्य नहीं है फिर भी पी रहा है, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? दोष तो लगेगा लेकिन जानते हुए वाले को कम लगेगा, बिना जानने वाले को ये तो नॉर्मल है। ऐसा समझिए। फिर मैंने अभी चारित्र मोह वाली बात कही, कषाय दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, कषाय के उदय से होने वाले तीव्र, कषाय दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, कषाय के उदय से होने वाला आगे वाला सूत्र है, किसी के बाद वाला होगा शायद 14 नंबर का सूत्र है, कषाय दयात तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, चारित्र मोहनी कर्म तीव्र कषाय के परिणामों से, मंद कषाय के परिणामों से, कषाय के भावों से नया आपने चारित्र मोहनी कर्म बांध लिया है। इस तरह से ये दर्शन मोह और चारित्र मोह संबंधी ये चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। मैं समझता हूँ ये दर्शन मोह किस तरह से बंधता है, ये दर्शन मोह के बंधन का कारण क्या है या वर्णवाद क्या है, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ना है अपने अंतराय। मैं तो चार आगासियां भी लेने वाला हूँ, अभी ध्यान रखना आगे आने वाले 20 मिनट में, अपने पास में 20 मिनट हैं, कर्म है 5, देखते हैं। अंतराय कर्म की चर्चा, बंधन के आश्रव के कारण, बंधन के क्या कारण, आश्रव के क्या कारण, ये अंतराय कर्म कैसे बनता है, वो उन्हीं से आगे बढ़ो। चलो अंतराय में क्या कहते हैं, दान लाभ भोग भोग वीर्य और फिर लिखा बाधा डालना, क्या विघ्न करणम अंतरायस्य है, सूत्र क्या है, विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न किया, ओ विघ्न किया इसने, ये क्या कह रहे हैं, ये विघ्न करता है, ये दूसरों के काम में बाधा डालता है, इसको पता नहीं है कि दूसरों के काम में बाधा डालने से दूसरों के काम में बाधा नहीं डालती, क्योंकि उसके काम में बाधा उसके वेतनी कर्म पे निर्भर करती है। ओहो क्या मयूर भाई क्या कह दिया, मैं सोच रहा हूँ यार इसका तो काम हरगिज नहीं होना चाहिए, इसका तो काम बिगाड़ के रहूंगा, इसके तो काम में डाल रहूंगा, इसको तो कैसे हो जाएगा, मैं भी देखता हूँ कैसे हो जाएगा, कि सुन विघ्न करण मंत्र आयुष्य, ये क्या कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य, तूने विघ्न करने की भावना भाई, तो दूसरे का विघ्न हो चाहे नहीं हो ये उसके उदय पर निर्भर करता है, लेकिन तूने अपने आप के ऊपर विघ्न आए ऐसा कर्म बांध लिया है, विघ्न करना मंत्र आयुष्य, क्या सूत्र है भाई, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं ये सारे सूत्र, कैसे जीवन जीना है हमारे को, जीवन जीने की स्टाइल क्या होनी चाहिए, दूसरे के काम में बाधा मत डालो, दूसरों के कार्य में सहयोगी बनो, सहयोग करो उनके काम में, नहीं हम किसी के काम में बाधा नहीं पहुंचाते, हम नहीं पहुंचाएंगे, उसके साथ में विघ्न होगा कि नहीं होगा ये तेरे परिणामों के ऊपर निर्भर करता है, क्या फिर उसके कर्म का क्या होगा बता, कितनी बाधा डालने के प्रयास नहीं किए गए कौरवों के द्वारा पांडवों के काम में विघ्न डालने के, फिर हुआ क्या, कितने प्रसंग ऐसे दिखते हैं कितनों के काम अड़चन डालते हुए दिखाई देते हैं और फिर होता क्या है, खुद ही पीछे हट जाता है उसका काम निराबाध रूप से चलता है, कितने किया अंतराय कर्म के क्षयोग कर्म से काम हो गया उसका, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने अंतराय कर्म बांध लिया। देखो ऐसा भी संभव है कि आप किसी के काम में बाधा डाल रहे हो, ये भी पॉसिबल, आपने किसी के काम में बाधा डालने का प्रयास किया और उसके काम में अटक गया, उसका काम भी अटक गया, पॉसिबल है ऐसा, आपका ऐसा करना और उसके अंतराय कर्म का उदय, उसके अंतराय कर्म का उदय चल रहा था और हम अंतराय कर्म बांध रहे थे, दोनों काम न्यारे न्यारे हैं, आप दूसरे के काम में बाधा नहीं डालेंगे, ये कला सिखा रहा है हमारे को कौन, अंतराय, अंतराय कर्म के आश्रम के कारण 5 बातें कही गई है, दान देने में कभी किसी के बाधक कारण नहीं बनेंगे, हम दान दे पाए चाहे नहीं दे पाए इट डजंट मैटर, हम नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, देने वाले की अनुमोदना करो, देने वाले की प्रशंसा करो, अरे यार ये काय का मंदिर में दान देता है, इनके काय की जरूरत है, ये क्या करेंगे, इनके लिए क्या, तुम अंतराय क्यों बांध रहे हो भैया, तुम अंतराय क्यों बांध रहे हो, सुनो तुमने ऐसा अंतराय बांधा ना तो तुम जब किसी से कुछ लेने के लिए जाओगे, मान लो कोई डिमांड करने के लिए, वो दे रहा होगा, उसने देने के लिए कमिट कर दिया होगा, तुम्हारे लिए आ जाएगा बीच में, तुम्हारा अंतराय नहीं हो पाएगा, बोलो, आपने दूसरे को दान से रोका था ना, दान देने से आपने ऐसा अंतराय कर्म बांध लिया कि आपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये चीज दिला दो, उन्होंने कमिट कर दिया कि तुम्हारी बर्थडे पे दिलाएंगे, हम खुश हो गए। 15 दिन बाद में बर्थडे आई, फिर उन्होंने दिलाया ही नहीं, कि क्या हुआ कि वो अंतर गैस पड़ गया, अंतराय आ गया, तुम भी मन मार करके रह गए, कोई बात नहीं, कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई, फिर उन्होंने भी एक्सक्यूज किया और तुम भी मान गए, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो अंतर जो पड़ गया है, ये जो गैप पड़ गया है, ये क्या हुआ? उन्होंने कमिट किया आपको कि आपको ये फोन दिलाएंगे 15 दिन बाद में, और आपका फेवरेट फोन था और आपको नया लॉन्च हुआ था अभी, आप बहुत खुश हो गए, 15 दिन बाद में मिलने वाला है। लेकिन 10-12 दिन बाद में क्या हुआ, उस फोन की रिपोर्ट बहुत नेगेटिव आने लगी और कंपनी ने वो सारे फोन मंगवा लिए वापस। कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है, अंतराय बांध कौन रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है, आखिर मेरे काम को अटकाया किसने? मेरे कर्म के उदय ने। इसलिए ये दान अंतराय, दान देने में बाधा मत डालो, लाभ में अंतराय नहीं, किसी को किसी चीज का लाभ हो रहा हो हम उसमें अंतराय नहीं डालेंगे। कोई व्यक्ति भोग कर रहा है, भोग क्या क्या हो सकता है, 5 इंद्रियों के भोग हो सकते हैं, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भोजन कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति रसना इंद्री का भोग है, भोजन कर रहा है, थाली के बैठे हुए व्यक्ति को हम टोकेंगे नहीं, आप यहां क्यों बैठ गए, उधर जाकर के बैठो, नहीं, अब बैठ गया तो कोई बात नहीं, प्रेम से खाने दो उसको। ये भोगांतराय कर्म बांध रहे हैं हम, यदि किसी को थाली भर से उठाने का परिणाम कर लिया तो, किसी के काम में बाधा पहुंचा दी है, ये भोगांतराय नाम का कर्म है। आप यदि ये चाहते हैं कि भोगांतराय नाम का कर्म न बंधे, तो मत टोकिए उसको। उपभोगांतराय नाम का कर्म, उपभोग और उपभोग में क्या अंतर है? भोग वन टाइम यूज, उपभोग रीयूज की चीजें, जो चीजें रीयूज की जाती हो उनमें बाधा नहीं, टोकेंगे नहीं यार, मेरा कोई बात नहीं, लो ना यार, अरे यार कोई बात नहीं, सबके लिए उपयोग करो, साइलेंट रहो, बाधा तो मत डालो, होते हुए काम को रोको तो मत। हर कार्य की अनुमोदना, वीर्य शक्ति और पावर की चर्चा की है, दूसरे को खाते हुए को रोक रहा है, तेरी शक्ति कमजोर हो रही है, तेरी पावर कमजोर हो रही है। दान लाभ भोग भोग वीर्य और इन पांचों के संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य ने क्या कहा, विघ्न करणम अंतरायस्य, ये सोचता है उसके काम को अटका दिया, ये सोचता है देखो मजा आया उसका काम अटक, और सुनो कृतकारी का अनुमोदना, ओहो ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, कृतकारी का अनुमोदना, दूसरे का काम अटकाने का सोचना, अटकाना, अटकाने के प्रयास करना, ये तो विघ्न करना हो ही गया, लेकिन किसी का काम अटक गया हो तो उसमें प्रसन्न होना, मजा आया इसका तो बहुत मजा आया यार, उनको चांस नहीं मिला हमें बहुत मजा आया, क्या कर रहे हो आप, सोचो जरा इन भावों का फल क्या होगा, इन परिणामों का फल क्या होगा, नेक्स्ट में करेंगे इसकी विस्तार से चर्चा, इन परिणामों का क्या फल लगेगा। दान लाभ भोग भोग वीर्य अंतराय करने पड़ गया, भविष्य में ध्यान रखेंगे लाइफ कैसे जीनी है हमारे को, हमारे को अपने जीवन में किसी के भी काम में बाधा नहीं डालनी है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते, ध्यान रखना कर्मों में किसी की सिफारिश नहीं चलती, कर्म रिश्वत नहीं लेते, कर्मों में रिश्वत नहीं चलती, सबके अपने अपने कर्म हैं, लेकिन वो कर्म हमारे कंट्रोल में है, जैसे भाव करोगे वैसे कर्म बनेंगे, जैसे कर्म बनेंगे वैसी परिस्थितियां बनेगी। यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपको दान देने में, आपके भोग में, आपके उपभोग में और आपकी शक्ति में, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इनमें यदि बाधा ना पड़े तो क्या करें, दो तरह के उपाय, नंबर वन आप बाधा मत पहुंचाओ, नंबर टू दूसरे के होने वाले कार्य की अनुमोदना करो, दूसरे का अच्छा काम हो रहा है उसकी अनुमोदना करो, उसकी प्रशंसा करो, किसी की तबीयत ठीक हो गई है मान लीजिए, आप उसकी प्रशंसा करो, अच्छा हुआ, मुंह बिगाड़ करके ये मत सोचो यार ये ताई को ठीक हो गया, ये वीर्य अंतराय कर्म बांध रहे हो आप इससे। किसी को हट्टा कट्टा स्वस्थ देख करके आप यदि ईर्ष्या भाव से ये परिणाम रखते हो, बीमारी नहीं पड़ता है क्या, ये कब तक चलेगा, और कब तक चलेगा ये वीर्य अंतराय कर्म बांध लिया आपने। किसी को स्वस्थ देख करके उसकी अनुमोदना करो, वीर्य अंतराय कर्म खुलेगा क्या? ये सारे कर्मों में इसी तरह का है सिलसिला, तो हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में अंतराय कर्म बांधने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ तो डर लगता है हमारे को इस अंतराय कर्म से, बचो इन कर्मों से बचने का। वैसे तो शाश्वत उपाय एक ही है, स्वभाव की साधना, आत्मा की आराधना, दृष्टि का स्वभाव संयुक्त होना, आत्म लाभ प्राप्त हो, नहीं तो फिर ये अंतराय दुख नहीं देगा आपको। वो कोई बारीक चर्चाएं हैं, वो कुछ विशिष्ट बातें हैं जिसकी चर्चा अगले सेशन में की जाएगी। अभी अंतराय की बात को मैं यही विराम देता हूं। पढ़ें आगे किसकी तरफ? देखिए अघातीय कर्म के आश्रम के कारणों की तरफ बढ़ें। अघातीय कर्म इनके क्या कारण है? अघातीय टोटली अघातीय कर्मों का फल मिलता है संयोगों के ऊपर, और ये संयोग वेदनीय दो तरह के हैं। वेदनीय दो लाइन दे दी है हमने यहाँ, उमा स्वामी आचार्य ने भी दो सूत्र दिए हैं इस वेदनी के लिए। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्यस्य। क्या? दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्यस्य। असाता वेदनी है, कैसे कैसे असाता बन रही है बताओ? दुखी कर रहे हो किसी को? किसी को दुखी करोगे दूसरे को दुखी नहीं करता। स्वयं के लिए दुखी होने के बीच होता है। दूसरा शोक संतप्त है, पुत्र है। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव पुत्र है ना? दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्यस्य। ये सूत्र नहीं मिला आपको? 11 नंबर का सूत्र, 11 नंबर का मिल गया पहले था। मैं थोड़ा सा ये घातिया घातिया के आधार पर अपने थोड़ी स्लाइड जो है आगे पीछे की। दुखी होना और करना, शोक सामने वाले को शोक हुआ है, शोक मग्न कर दिया, हमारी वजह से कोई शोक मग्न हो गया। ताप आताप जलना, आक्रंदन अश्रुपूरित रोना, वो आक्रंदन कहलाता है। आंखों से आंसू आ गए हमारी वजह से, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू क्यों आए? वध परिदेवन, ये जो बातें कही गई है ये कुछ अलग हटके बातें हैं, थोड़ा विचार करना इनके बारे में। बहुत डिटेल मिल जाएगी आपको सब जगह शास्त्रों में इन सब पॉइंट्स के संदर्भ में, लेकिन एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुख शोक ताप आक्रंदन तो देखना, मैंने यहां इसके नहीं लिखा। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानी, वध परिदेवनानी आत्म पर उभय स्थानानी असद्वेद्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेरे पास यहां जगह नहीं थी लाइन में, क्योंकि एक ही पेज पर चारों अघातिया कर्म देने थे। आत्म पर उभय, ओ मुकुंद भाई खतरनाक बात कह रहे हैं। तो खुद पे भी लागू हो रही है। ये व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, जो भी परिस्थिति बनी, अब ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं आपसे बहुत माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं क्या कमरा बंद करके खुद रो भी नहीं सकता अकेले? तुम्हारा क्या कर रहा हूँ मैं अब? तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें थोड़ी मैं दुखी कर रहा हूँ, अब मैं खुद ही दुखी हो रहा हूँ, इसमें भी तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, तो स्वयं दुखी होकर के असाता कर्म पाल रहे हैं। आप सोचो, उमा स्वामी आचार्य ने 2000 साल पहले पॉजिटिविटी से जीना सिखाया है। सोचो जरा क्या क्या कह रहे हैं। आत्म पर उभय स्थानानि असद्व्यज्यस्य, पॉजिटिव सोचो, दुखी मत हो, डोंट थिंक नेगेटिव, ये सिखाया है उमा स्वामी आचार्य ने। ये भले आज करते हैं सब चर्चाएं, आज जितनी चर्चाएं दिख रही है मोटिवेशनल स्पीकर और सब चर्चाएं, दो दो घंटे तीन तीन घंटे के सेमिनार लेंगे, आखिर इनका जन्म कहां से हुआ? रिसर्च करे ना कोई व्यक्ति इन चीजों के ऊपर अर्पित, यदि कोई ऐसे निकाले, मैं आपको ऐसे एविडेंस निकाल निकाल करके बताऊं कि मोटिवेशन के बारे में कहां कहां सूत्र निकल करके आए जनागम में, तो आपको पता लगेगा कि जैन दर्शन की देन है आज जितनी मोटिवेशन की चर्चाएं चलती है, पॉजिटिव थिंकिंग की जितनी चर्चाएं चलती है, ये जैन दर्शन की देन है। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ये कहां से आई ये बात, थिंक पॉजिटिव। ये नेगेटिव सोच रहा है, अपने आप के बारे में सोच रहा है, मत करो, डोंट डू, नहीं करना है हमारे को, कुछ से नहीं करना है, दुखी भी नहीं होना है। ध्यान रखना, बड़े से बड़ा संकट आपके माथे पर आ जाए, बड़ी सी बड़ी तकलीफ आपके माथे पर हो, लेकिन यदि आप दुखी होंगे तो वो उसके उपचार का कोई समाधान नहीं, उससे कोई उपचार नहीं मिलेगा, दुखी हो रहे हैं तो। एक बात और नीतिकारों ने कही अपने क्षेत्र चूड़ामणि ग्रंथ में, उन्होंने कही अशांत चित्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति या दुखी होना, ये दुख का काल ये आपको समस्या में समाधान नहीं करने देगा। आप दुखी हो रहे हैं ना, आप और दुखी होंगे, तो क्या करें, आप थोड़ा सा हिम्मत रखो, थोड़ा सा सोचो कि अभी ये संकट आ ही गया है ना, अब तो क्या हो सकता है, मान लो दुकान में आग लग गई, अब क्या करें, बोलो अब क्या करें, रोने बैठ जाएं कि बुझाने का प्रयास करें, रोने बैठ जाऊंगे तो बुझा नहीं पाऊंगे, देख लेना क्या करना है मुकुंद भाई, रोने बैठना है, इतना नुकसान हो गया, आधी दुकान जल चुकी थी आप जब स्पॉट पर पहुंचे तब, आधी जल चुकी थी, अब बाहर खड़े होकर के आपने देखा और वहीं बैठ करके रोना शुरू कर दिया, बोलो समाधान क्या है, मूर्ख अभी मत रो, ये रोने का समय नहीं है, जो बच गया है उसे संभालो, जो हो गया उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ये जितने हेतु दिए हैं यहाँ, दुख शोक आदि जितने हेतु बतलाए हैं, ये सब परिस्थिति सापेक्ष है। घर में आग लग जाना वेदनी असाता का उदय था, तन में आग लग जाना असाता का उदय था, परिवार में कुछ ट्रेजडी हो जाना असाता वेदनी का उदय था, घर टूट जाना असाता वेदनी का उदय था, पत्नी बच्चों आदि का वियोग हो जाना असाता वेदनी का उदय था। माने जिन जिन संयोगों की उपस्थिति में आप दुख फील करते हैं, दुख महसूस करते हैं, ये सारी बातें यहां लागू हो जाएगी। जहां जहां आप दुख फील करते असाता जन्य परिस्थितियां आए वो सब असाता वेदनीकरण की हो जाएगी। लेकिन दुखी होना मत, दुखी करोगे तब तो असाता बन ही रहा है, दुखी होंगे तब भी, बेटा मर गया और उमा स्वामी आचार्य कह रहे शोक संतप्त मत होना, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा मर गया और शोक संतप्त नहीं हो, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है तत्व ज्ञान के बल पर, भेद ज्ञान के बल पर, हिम्मत रखो थोड़ी सी, मालूम है झटका लगता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी शोक संतप्त नहीं होते, मत मानो असाता। समझ में आ गई बात, सेकेंड लाइन, भूत वृत्यन कंपादान सराव संयमादि योग है शांति शौच मिति पद्वेद्यस्य। भूत वृत्यनुकंपादान सूत्र है, भूत वृत्यनुकंपादान आगे क्या लिखा, सराव संयमादि योग है शांति शौच मिति पद्वेद्यस्य, बड़ा सूत्र है थोड़ा अच्छा है, उसमें निकाल लिए मैंने दो पांच पॉइंट, व्रतियों पर दया, भूत वृत्ति अनुकंपा, व्रतियों के ऊपर अनुकंपा है, भूत वृत्ति अनुकंपा दान, सराग संयम मादि, सराग संयम आदि, फिर शांति शौच मिति सद्वेदस्य, योग है योगों की ऐसी प्रवृत्ति, साता वेदनी के लिए कुल मिलाकर के बात यही है, असाता के लिए जो उपाय बतलाए थे, जो काम बतलाए थे, उनसे बचो तो साता हो जाएगी, असाता से बचोगे तो साता हो जाएगी, यही काम करना है और क्या करना है, बचो असाता से, आप बच गए असाता से, मतलब असाता के जो कारण थे उनके विपरीत कार्य किए, सेवा करी, दान दिया, संयम से रहे, शांति से रहे, निकषाय भाव हुआ, उज्जवल परिणाम हुए, दो लोगों का सहयोग करने के परिणाम हुए, बाधा डाली थी आपने तब तो असाता वेदनी, सामने वो अंतराय का अलग था, और ये उसके उसके जो परेशानियां प्रॉब्लम हुई उसको देख करके आप खुश हुए कि ये यहाँ कह रहे हैं उसके विपरीत करो तो साता वेदनी कर्म बनेगा। चलिए और आगे बढ़े, विस्तार से चर्चा तो बहुत हो सकती है लेकिन आज अंतिम दिन है, कल सुबह टेक्सास के लिए निकल जाना है हमारे को। देखिए क्या करें, आयु की तरफ बढ़ो आगे। आयु कर्म अब ये चार है, अब बहुत विस्तार है इसका, आयु का जो अति विस्तार है हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। हमने स्लैश देकर के चारों की बात कर दी है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है, चार सूत्र दिए हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है, माया से यज्ञ नस्य है, और अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य है, और स्वभाव मार्गवम चे, ठीक है, ये तो मनुष्य के हो गए। फिर सराग संयमादि योग है, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य और सम्यक्तम चे, ये सब देवायु के आश्रम के कारण बतलाए। अब ये सब देख लो आप, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखने का परिणाम, भाव ऐसे विचार, इन सब से क्या किया गया, बहुत आरंभ परिग्रह रखने का परिणाम क्या किया, इससे नरक बांध रहा है। सुन, जब परिणाम ऐसे चल रहे होंगे तो नरक बन जाएगा। और माया क्या रखने का परिणाम, माया त्रिय ही होना चाहिए, त्रियन चाहिए के आश्रम का कारण। और अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्य से अल्प आरंभ और स्वभाव की सरलता, क्या था, स्वभाव मार्दवम चेत, सूत्र लिया स्वभाव मार्दवम चेत, स्वभाव की सरलता, ये मनुष्य आयु के आश्रम का कारण हो गया। फिर देवायु के लिए क्या क्या कह दिया, राग संयम, संयम के साथ में राग, संयमा संयम, और अकाम निर्जरा, और अकाम निर्जरा हुई कुछ, और बाल तपांसी और बाल तप देवत्व, ये देवायु के आश्रम के कारण है। चलिए आगे बढ़े, पराग संयम का मतलब वास्तव में संयम तो है अपना उपयोग अपने आत्मा में रहना, ये असली संयम है। संयम शब्द का अर्थ होता है सिमटना, उपयोग सब तरफ से सिमट करके अपने स्वभाव में रहे, ज्ञायक स्वभाव में, इसका नाम है वास्तव में संयम। और इस असली संयम के साथ में जो किंचित राग वर्षता है, रागात्मक वृत्ति, वो है सराग संयम, राग सहित संयम, माने संयमी पुरुषों के जीवन में वर्तने वाला किंचित रागाधिक संयम, वो देवायु के आश्रम का कारण बन जाता है। बाल तप या अज्ञानता पूर्वक किए गए तप, ना समझी में किए गए तप, ये भी पवनत्र के कारण बन जाएंगे, देवायु के आश्रम के कारण बन जाएंगे। देवत्व कह दिया, नाम आगे सूत्र दिए, योग वक्रता विसंवादनम क्या शुभस्य नाम है, सूत्र है आगे, ये सब मैं छठा अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको। योग वक्रता विसंवादनम क्या शुभस्य नाम है, मुझे सूत्र याद है, मुझे नंबर याद नहीं है, मुझे 22 नंबर, योगों की वक्रता, विसंवाद, लड़ने की प्रवृत्ति, लड़ने झड़ने की चेष्टा, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना, मुंह बिगाड़ना, तुम मुंह बिगाड़ रहे हो तेरा मुंह बिगड़ जाएगा, किसी को देख करके नाक मुंह टिकोड़ता रहता है ना, मुंह बिगाड़ता रहता है, शरीर की जैसी उल्टी प्रवृत्ति करेगा वैसा उल्टा कर्म बनेगा, ऐसी प्रवृत्ति होती है। नाम कर्म क्या करूं, किसको कैसा शरीर मिला है, क्षण क्षण के परिणामों से बदलता रहता है भाई साहब, असंख्यात लोग प्रमाण इतने 93 तो प्रकृतियां हैं इनकी, इन नाम कर्म की क्या बताएं आपको। फिर उल्टा लगाओ, ये तो अशुभ नाम कर्म का हुआ, तद विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत, माने आपने किसी के प्रति बिगाड़ा था, अशुभ नाम कर्म बांधा, और आपने योगों के की प्रवृत्ति सही दिशा में की, माने सही ढंग से बैठे, सही ढंग से धार्मिक प्रवृत्तियां, धार्मिक कार्य किया, कलाप, उठना बैठना, चलना, खाना पीना, बोलना, इन सब में साधर्मियों के प्रति बहुमान का भाव, गुरुओं के प्रति आदर का भाव, पाप से डरे, धार्मिक प्रवृत्तियां हुई, तो शुभ नाम कर्म, इससे शुभ नाम कर्म बनता है। चलिए 2 मिनट में पूरा करता हूं, अरे ये नहीं दिखा गया, ये योगों की वक्रता, विसंवाद, लड़ने की प्रवृत्ति, अशुभ नाम कर्म हो गया, आदर का भाव, पाप से डरना, धार्मिक प्रवृत्ति, ये शुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण हुआ। बस 2 मिनट में पूरा करता हूं। देखिए गोत्र कर्म ये क्या है, गोत्र कर्म कैसे बनता है, तो कहा परात्म निंदा प्रशंसे तत्सदगुणों चादनो भावनी के नीचे गोत्र से पर आत्म निंदा प्रशंसा वो खतरनाक चीजें हैं, घंटों चर्चा करो ऐसे सूत्र हैं। पर और आत्म निंदा और प्रशंसा, पर दूसरे और आत्म निंदा और प्रशंसा, दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा। सद सद सदगुणो चादनो भावने, सद सदगुणो चादनो भावने के नीचेर गोत्र से नीच गोत्र कर्म का बंधन कर रहा है, नीच गोत्र कर्म बांध रहा है। विचार विवेक नहीं है इसको, हम क्या करें बंधन करकर। और इसके विपरीत है वो क्या है, नीचेर वृक्षे मुक्ते को चौतरस्य। सूत्र क्या, नीचेर वृक्षे मुक्ते को चौतरस्य, माने नम्र वृत्ति, विनम्र वृत्ति, निरभिमानता, ये उच्च गोत्रकरण के आश्रव का कारण है। इसलिए भाई किसी की निंदा मत करो, आत्म प्रशंसा का भाव मत रखो, क्या सामने वाले की प्रशंसा करो और अपने अवगुणों और अपने दोषों को देखो, इससे नीच गोत्र कर्म नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये आठों कर्मों संबंधी चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो चर्चा चलने वाली है वो चलेगी बहुत महत्वपूर्ण बात कि आखिर ये कर्म हमें दुखी करते हैं कि नहीं, और आखिर बचे तो कैसे बचे और क्या उपाय है और हमारे हाथ में क्या है। इन सब चर्चाओं को भोजन के बाद अगले सेशन में। महावीर भगवान।